नमस्कार प्यारे श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रची सुसमाचार नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। श्रोताओं, इस पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उसके जीवन के विषय में बताया गया है और उन्होंने जो शिक्षाएं दी और विभिन्न प्रकार के जो आश्चर्य कर्म किए उन सभी का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम शामिल हों और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मित्र, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रभु के जीवित और सच्चे वचन से सीखने के लिए तैयार हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आज हम नए नियम की पुस्तक में से मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक का परिचय देखने जा रहे हैं, इसलिए कृपया आप ध्यान से इस कार्यक्रम को सुने और आत्मिक लाभ उठाएं। मित्रों, यद्यपि मत्ती रचित सुसमाचार में केवल 28 अध्याय हैं, फिर भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इतना ही नहीं, परंतु उत्पत्ति और मत्ती ये दोनों ही बाइबल की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार के अध्ययन की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मैं पुराने तथा नए नियम के बीच संबंध जोड़ना चाहूंगा ताकि उनमें जो अंतर है वो समाप्त हो सके, क्योंकि नए नियम को भली भांति समझने तथा उसे ग्रहण करने के लिए बहुत अधिक जरूरी है कि हम इस अंतराल को या इस विषय को जान ले जो लगभग 400 वर्ष का है। यह समय काल नहेमिया, मलाकी और बेतलहम में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बीच का है। ध्यान में रखें कि मलाकी के पश्चात स्वर्ग एकदम शांत हो गया, परमेश्वर द्वारा प्रसारण सेवा बंद हो गई और 400 वर्ष तक परमेश्वर द्वारा कोई भी शब्द सुनाई नहीं दिया, अर्थात बोला नहीं गया। तत्पश्चात अचानक परमेश्वर का स्वर्गदूत यरूशलेम में जकरिया नामक याजक के पास, जब वो परमेश्वर के मंदिर में वेदी के पास खड़ा था और प्रार्थना कर रहा था, प्रकट हुआ। उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म की घोषणा की, जो कि प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे चलेगा। अब आगे देखेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कितना महत्वपूर्ण है। यहूदा राष्ट्र की आंतरिक स्थिति में बहुत से बदलाव आए, नई संस्कृति, अलग अलग प्रथा तथा अपरिचित संस्थाएं इस काल में उभर कर आई और नए नियम में इतने से बहुत सारी बातें प्रकट हुई और नए नियम में इनमें से बहुत सारी बातें प्रकट हुई। नए तथा पुराने नियम के बीच के इस समय में संसार के इतिहास ने जबरदस्त तरक्की की। पुराने नियम की समाप्ति मेदी तथा पारसी की प्रभावी सत्ता के द्वारा हुई, वैसे ही मिस्र भी इस समय के विश्व की राजनीति में अग्रसर राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। दोनों नियमों के बीच, अर्थात पुराना नियम और नया नियम के बीच के अंतराल में यह दोनों राष्ट्र लुप्त हो गए। विश्व की सत्ता पूर्व से पश्चिम की ओर गई, पूर्व के देशों में पश्चिम के देशों की ओर, एशिया से यूरोप की ओर, मेदी पारसी से ग्रीस की ओर गई। जैसे ही नए नियम का आरंभ होता है, हमें एक नई सत्ता के रूप में रोमी साम्राज्य संसार पर राज्य करते हुए नजर आता है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को यदि हम मद्देनजर में रखें तो इस महान परिवर्तन के विषय को हम भली भांति समझ पाएंगे, क्योंकि इतिहासकारों ने जो तिथियां बताई हैं उनमें विभिन्नताएं हैं। आप इन तिथियों को अनुमान के तौर पर ले सकते हैं। 480 BC, इसमें छयस राजा जो पर्शिया का राजा था, वो थर्मोपोलिस में ग्रीक के विरोध में विजयी हुआ, परंतु सलामिस के युद्ध में पराजित हुआ। देखा जाए तो तूफान ने उसे हरा दिया था। यह पूरब से पूरे संसार पर अधिकार या सत्ता प्राप्त करने की आखिरी कोशिश थी। फिर 333 BC, दानियल की पुस्तक के 8 अध्याय में पश्चिम की ओर से आने वाले बकरे का वर्णन किया गया है, बकरा जो सिंह के साथ था, और वह बकरा जिसे संबोधन किया गया है अलेक्जेंडर महान था। उसने पूरी ग्रीक की सेना को इकट्ठा करके पर्शिया पर विजय प्राप्त करने के लिए उनकी अगुवाई की। फिर हम 332 BC, अलेक्जेंडर महान यरूशलेम में आया। उसे दानियल की भविष्यवाणी दिखाई गई जो उसके विषय में की गई थी, इसलिए उसने यरूशलेम को छोड़ दिया। 323 BC, पर्शिया के मार्ग पर अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई। उसकी योजना थी कि अपना साम्राज्य वहां पर स्थानांतरित करे। उसके पश्चात पूरब और पश्चिम दोनों जगह का राज्य उसके चार सेनापतियों के बीच में विभाजित हुआ। 320 बीसी टोलेमी सोटर ने यहूदा को मिस्र से जोड़ दिया और 312 बीसी में सेल्यूकस ने सेल्यूसाइड के राज्य की स्थापना की, जो आज सीरिया कहलाता है। उसने यहूदा राज्य को भी लेने की कोशिश की और इसलिए यहूदा सीरिया और मिस्र के बीच युद्ध भूमि बन गया। यह छोटा सा देश एक प्रतिरोध राज्य बन गया। यहूदा की भूमि पर यह दोनों देश ऊपर नीचे होते रहे। 203 बीसी अंतियोकस महान ने यरूशलेम को ले लिया, अर्थात उस पर कब्जा कर लिया और यहूदा सीरिया की सत्ता में नीचे आ गया। 170 बीसी अंतियोकस एपिफनस ने यरूशलेम को जीत लिया और यरूशलेम में जो मंदिर था उसे दूषित किया, जिसका वर्णन दानियल की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 9 पद में मिलता है। छोटे सिंह कहकर उसे संबोधन किया गया है। उसे यहूदियों के इतिहास का नीरो भी कहा जाता है। 166 बीसी यहूदा का याजक मत्तातियस ने सीरिया के विरोध में विद्रोह किया। यह मकाबियन समय का आरंभ था। इसराइल राष्ट्र ने इस समय जो सताव और दुख उठाए वो शायद कभी नहीं देखे गए और न झेले गए थे। इसी अंतराल में और अधिक वीर के रूप में दिखाई दिए गए यहूदा मकाबियस, जिसके नाम का अर्थ है हथौड़ा, उसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। 63 बीसी पाम्पे जो रोमी था उसने यरूशलेम को जीत लिया और इसराइली लोग एक नए विश्व सत्ता के अधिकार के नीचे आ गए। यीशु मसीह जन्म के समय भी, ये नए नियम के समय, वे रोमी सत्ता के अधीन थे। 40 बीसी रोमी अधिसत्ता ने हेरोदेस को यहूदा का राजा नियुक्त किया। उसके और उसके परिवार की तरह कोई भी व्यक्ति दुष्ट नहीं हुआ। कुछ शायद भयंकर माफिया के बारे में सोचेंगे, परंतु हेरोद और उसका परिवार उनसे भी दो कदम आगे था। 37 बीसी हेरोदेस ने यरूशलेम पर कब्जा किया और अंतिगोनस का कत्ल किया, जो मकाबियन राजा के याजकों में से अंतिम था। 31 बीसी केसर अगस्तस रोम का राजा बना। 19 बीसी हेरोदियन मंदिर बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। इस भवन का कार्य काफी लंबे समय तक चलता रहा। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब और नए नियम के समय तक भी चल रहा था। 4 बीसी हमारे प्रभु यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ। इन दो नियमों के बीच के अंतराल में यहूदा राष्ट्र को जो अनुभव हुए उनके कारण इस राष्ट्र के आंतरिक जीवन में बहुत ही मूलभूत परिवर्तन हुए। बाबेल की गुलामी या दासत्व के पश्चात वे मूर्ति पूजा अर्थात अन्य देवी देवताओं की पूजा छोड़कर विधि सम्मत पवित्रता की तरफ पागलों की तरह हो लिए। व्यवस्था उनके लिए एक मूर्ति समान हो गए। प्रतिदिन की बोलचाल में उच्च स्तर इब्रानी भाषा के स्थान पर अरेमिक ने जगह ले ली, जबकि इब्रानी भाषा यहूदी सभाघरों के लिए सुरक्षित रखी गई। ऐसा लगता है कि दासोते के पश्चात प्रार्थना सभाघर अस्तित्व में आए। यहूदा में तथा संसार में जहां कहीं भी ये लोग गए, प्रार्थना सभाघर इनके जीवन का केंद्र स्थान बना। वैसे ही इन लोगों के मध्य ऐसे कई दल उठ खड़े हुए जिनका उल्लेख नए नियम में मिलता है और जो पुराने नियम में कभी भी सुनने में नहीं आया। पहला है फरीसी। यह बहुत ही प्रभावी दल था। यहूदी जीवन शैली को सारे विदेशी प्रभावों से बचाने के लिए वे आगे आए। वे बहुत ही सख्त कायदे कानून को मानने वाले में से एक थे और पुराने नियम पर विश्वास रखते थे और अन्य सारे दलों से ये अधिक प्रभावी थे। यहूदी व्यवस्था का कठोरता के साथ पालन करने वाला यह दल अस्तित्व में कैसे आया, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। फिर भी ईस्वी पूर्व 165 में जब मक्काबी बंद हुआ तब इसका उदय हुआ। वे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले राजनीति के लोग थे और दाऊद के वंश से राज्य स्थापित करना चाहते थे। इसका अर्थ हुआ कि वे धार्मिक राजनीतिक दल थे। आज के संदर्भ में हम उन्हें धर्म सिद्धांतों के लिए मूलगामी और राजनीति में उतने ही आगे बढ़े हुए कह सकते हैं। दूसरा सदूकी। सदूकी उन लोगों का दल था जो पैसे वाले, धनी, सामाजिक तौर पर मिलनसार थे और परंपरा रीति रिवाज से छुटकारा पाना चाहते थे। क्या यह सब सुनकर आपको वर्तमान स्थिति याद आ रही है? क्या यह मनोवैज्ञानिक या दिलचस्प नहीं है कि इस देश की धनी परिवार या उदारवादी स्वतंत्र विचार रखते हैं? आज भी धनी लोगों के खाने की मेज से झूठन के चूर चार नीचे गिरते हैं। वे चूर चार देने के लिए तो तैयार रहते हैं, परंतु धन संपत्ति नहीं। सदुकी अपने सिद्धांतों में स्वतंत्रवादी थे और अलौकिकता को अस्वीकार करते थे। इन सारी बातों के कारण वे फरीसियों से एक कदम विपरीत थे, यानी ग्रीक और भोगवादियों के सदृश थे, जो ये कहते थे खाओ पियो और मौज करो क्योंकि कल तो मरना ही है। शायद हमारे मन में सदुकियों के प्रति गलत धारणा आ सकती है। वास्तविक रूप में वे अच्छा जीवन प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि शरीर की सारी अभिलाषाओं को पूरा करके उन पर नियंत्रण पा सकेंगे, उन्हें पूरी आजादी देकर उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी। श्रोता, आज हमारे समय में भी बहुत सारे लोगों को ऐसी ही धारणा है। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि उस समय भी लोगों ने कोशिश करके देखी और नाकामयाब रहे, और आज भी उनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। तीसरा दल, शास्त्री। इस दल के लोग एज्रा के समय में ही पेशावर व्यवसायी के रूप में व्यवस्था की व्याख्या करने वाले थे। वे व्यवस्था के पीछे जो आत्मा है उससे अधिक व्यवस्था में जो लिखा गया है उसके प्रति अधिक आस्था रखते थे। जब हेरोद राजा ने शास्त्रियों को बुलाकर उन्हें यीशु मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए इस विषय में पूछा, तो उन्हें पता था कि वो स्थान बेतलहम है। आपको शायद लग रहा होगा कि तुरंत ऊँटों पर चढ़कर वे उसे ढूंढने या देखने चल पड़े होंगे। जी नहीं, उन्हें उसमें कोई रुचि नहीं थी। वे व्यवस्था में लिखी हुई बातों में इतने खो गए थे कि उन्हें और किसी भी बात की रुचि नहीं थी। मेरे प्रिय श्रोता, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हुई बातों का ज्ञान प्राप्त करना और उन बातों को जीवन में लागू नहीं करना, जीवन का हिस्सा न बनाना, बहुत ही धोखादायक है, अर्थात खतरे वाला है। अध्ययन द्वारा हम पवित्र शास्त्र की मूल वास्तविकताओं को सीख सकते हैं और सारे धार्मिक सिद्धांतों की सच्चाइयों को जो उसमें है उसे जान सकते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन को अपने हृदय पर अधिपत्य न करने देना दुख की बात है। यह शास्त्री इस प्रकार के समूह थे। आज के हमारे युग में मैं यहां पर कबूल करना चाहूंगा कि कुछ बहुत ही कठोर हृदय वाले लोग या कट्टर रूढ़िवादी हैं। अपने बातों को सही दर्शाने हेतु वे इंसान को बर्बाद करने से भी नहीं हटते। यह नितांत आवश्यक है कि हम पवित्र शास्त्र को जानें, किंतु उससे अधिक आवश्यक यह है कि हम उसे अपने जीवन में व्यवहारिक रूप दें तथा दूसरों तक पहुंचा दें। अगला दल है हेरोदियन। प्रभु यीशु मसीह के समय एक पार्टी थी जो पूर्णतः राजनीतिक थी। यह पार्टी हेरोद को हमेशा के लिए राजा के रूप में देखना चाहती थी, जिससे कि उनकी तथा पार्टी की स्थिति मजबूत रहे, उनके हाथ में सत्ता रहे। यद्यपि परमेश्वर द्वारा इस अंतराल में कोई प्रकाशन नहीं दिया गया, फिर भी इस समय बहुत सारी घटनाएं और बातें हुई। मिस्र के सिकंदरिया में 285 से 247 ईसा पूर्व में इब्रानी भाषा से ग्रीक भाषा में पुराने नियम का अनुवाद किया गया। यह अनुवाद प्रत्येक इसराइली के 12 गोत्र में से 6 सदस्यों को लिया गया और उनके द्वारा किया गया। इस प्रकार कुल 72 सदस्य हुए, इसलिए इस अनुवाद को सेप्टोजिन नाम दिया गया, जिसका अर्थ है 70। इस अनुवाद को पौलुस ने इस्तेमाल किया और प्रभु यीशु मसीह ने भी उसमें से कई वचन अपने भाषण के दौरान उपयोग में लाए। इसी समय पुराने नियम का अपोक्रिफा भी लिखा गया। इसमें कुल 14 किताबें हैं जिनमें प्रेरणा का कोई चिन्ह नजर नहीं आता। 2 पुस्तकें ऐसी हैं जिन्हें सिडोपीग्राफा के वर्ग में रखा गया है, साल्टर ऑफ सोलोमन और द बुक ऑफ एनोक। इन्हें पुराने नियम के 2 व्यक्तियों के नाम से लिखे गए हैं, परंतु इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ये दोनों इन पुस्तकों के लेखक हैं। यद्यपि इस युग को शांत युग कहा गया है, किंतु परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन के लिए इस संसार को तैयार कर रहे हैं। यहूदी, यूनानी सभ्यता, रोमी साम्राज्य और पूर्ववासी उत्साहित जनता, इन सबको उद्धारकर्ता के आगमन के लिए तैयार किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक दृश्य निर्माण किया जिसे पौलुस ने इस प्रकार कहा, जब समय पूरा हुआ या समय की भरपूरी नाम दिया। गलतियों की पत्री 4 अध्याय के 4 पद में आप इसे देख सकते हैं। उस समय के संसार के 4 प्रमुख समूहों को संबोधित करते हुए 4 सुसमाचार लिखे गए। पहला है मतिरचित सुसमाचार। मतिरचित सुसमाचार को इसराइल राष्ट्र को संबोधित करते हुए लिखा गया। उसे प्रथम इब्रानी भाषा में लिखा गया और उस समय के धार्मिक लोगों को संबोधित करते हुए लिखा गया। मरकुस रचित सुसमाचार रोमी वासियों को संबोधित करते हुए लिखा गया। रोमी लोग क्रिया या कार्य करने वाले थे जो यह विश्वास रखते थे कि सरकार, कानून और नियम व्यवस्था के द्वारा ही संसार को नियंत्रित किया जा सकता है। आज भी बहुत से लोगों को ऐसा ही लगता है। यह सच है कि समाज में कानून व्यवस्था होनी चाहिए, परंतु रोमियों ने बहुत ही जल्द समझ लिया कि सिर्फ इन बातों के आधार पर वे संसार पर प्रभुता नहीं कर पाएंगे। संसार को एक ऐसे व्यक्ति के विषय में सुनने की आवश्यकता है जो कानून व्यवस्था पर भी विश्वास करता था, परंतु जिसने पापों की क्षमा, कृपा और परमेश्वर की करुणा और दया को भी दिया। यही प्रभु है जिसे मरकुस रचित सुसमाचार में रोमियों के सामने प्रस्तुत किया गया है। लुका रचित सुसमाचार यूनानी लोग जो बुद्धिजीवी तथा ज्ञानी लोग थे उनको लिखा गया है, और यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रत्यक्ष रूप से विश्वासी लोगों के लिए लिखा गया, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ववासियों के लिए जो गूढ़वादी और ज्ञानवादी थे, जो अपने छुटकारे के लिए पुकार रहे थे और जो अपने ज्ञान में उलझे हुए थे, उनके लिए है। मित्रों, आज भी संसार छुटकारे के लिए चिल्ला रहा है। धार्मिक व्यक्ति को धर्म की नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर पिता मनुष्य को धार्मिक नहीं परंतु धर्मी बनाना चाहता है। जिस मानव के पास बल है, सामर्थ है, अधिकार है, उसे ऐसे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है जिसमें बचाने की सामर्थ है, जो मानव को छुटकारा दे सके। हम विश्वास द्वारा सेंटमेंट धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से इसलिए जीवित किया कि पापी मानव धर्मी ठहराया जा सके। लेकिन पापी मानव को आवश्यक है कि वह विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आए, पापों के लिए पश्चाताप करे और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे। विचारशील मानव को आज ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उसकी बौद्धिक तथा आत्मिक जरूरतों को पूरा कर सके, और अवश्य है कि बेसहारा मानव को ऐसे उद्धारकर्ता को जानने की आवश्यकता है जो सिर्फ उसको बचाए ही ना, परंतु परमेश्वर के लिए जीने के लिए उसे योग्य बना सके, अर्थात उसे तैयार कर सके। मित्रों, हम लेखक के बारे थोड़ा जानना चाहेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार एक चुंगी लेने वाले नाकेदार या कर वसूल करने वाला कार्यकर्ता था, भटियारे के द्वारा लिखा गया, जिसके ऊपर प्रभु यीशु ने बड़े निश्चयता के साथ हाथ रखा। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, जैसे ही यीशु वहां से आगे बढ़ा, उसने मत्ती नाम के एक मनुष्य को चुंगी चौकी में बैठे देखा और उसने उससे कहा, मेरे पीछे आ। वह उठा और उसके पीछे चल दिया। मित्रों, वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला एक शिष्य था। पापियस कहते हैं कि यूसेबियस निश्चय दिलाता है और बाकी सर्वोच्च धर्माधिकार रखने वाले पूर्वज सहमति दर्शाते हैं कि यह सुसमाचार इसराइल राष्ट्र के लिए, जो कि धर्म को मानने वाले धार्मिक लोग थे, उनके लिए इब्रानी भाषा में लिखा गया। इन सब बातों की पृष्ठभूमि देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, परंतु संसार में यीशु मसीह के आगमन के लिए इस राष्ट्र को परमेश्वर ने तैयार किया, और वो इस राष्ट्र से आए, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 22 पद में, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। एक जर्मन इतिहासकार ने कहा कि परमेश्वर ने उद्धारकर्ता को तैयार किया कि वो इसराइल से निकले, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, और उसने गैर यहूदियों को उद्धार के लिए तैयार किया क्योंकि वे भटके हुए थे और उन्हें उद्धार की आवश्यकता थी। मित्रों, यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आगे देखते हैं, यह महत्वपूर्ण पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल की मुख्य पुस्तक है, क्योंकि यह पुराने नियम में जाकर पुराने नियम की बहुत सारी भविष्यवाणियों को इकट्ठा करती है जो किसी भी और पुस्तक में नहीं मिलती। जितनी अधिक भविष्यवाणियां इस पुस्तक में उल्लेख की गई है, दूसरे सुसमाचार में नहीं मिलती है। शायद कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहे, क्योंकि यह पहले यहूदियों को लिखी गई, परंतु बाद में नए नियम में अन्य सुसमाचारों की अपेक्षा आगे बढ़ती है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि कोई भी सुसमाचार का लेखक कलीसिया का नाम लेकर नहीं लिखता है, परंतु मत्ती के नाम के साथ लिखता है। मत्ती ही है जो प्रभु के शब्दों को जोड़ता है, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 18 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मित्रों, एवन रेनान एक फ्रेंच संदेहवादी ने सुसमाचार के विषय में इस प्रकार से कहा, यह मसीह समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके जैसे महत्वपूर्ण पुस्तक और नहीं लिखी गई। यह एक महत्वपूर्ण कथन या वाक्य है जो उसके द्वारा आ रहा है। मती जो एक चुंगी लेने वालों में से परिवर्तित हुआ था, जो परमेश्वर के आत्मा द्वारा चुना गया था कि वह इस सुसमाचार को विशेषकर इसराइली लोगों के लिए लिखे। मती रचित सुसमाचार परमेश्वर के कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है। स्वर्ग का राज्य एक भाव है जो इस सुसमाचार में विशिष्ट है। यह इसमें 32 बार आता है और राज्य शब्द 50 बार आता है। स्वर्ग का राज्य, इस कहावत को सही रीति से समझना इस सुसमाचार और बाइबल में किसी भी व्याख्याकार के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, क्या मैं यहाँ पर अभी एक बात कहूँ? मैं इसे सिद्धांतिक और सुनिश्चित बनाना चाहता हूँ कि राज्य और कलीसिया दोनों एक नहीं है। वे दोनों एक जैसे नहीं है। यद्यपि कलीसिया राज्य में है, संसार में यह सब भिन्न है। उदाहरण के तौर से हम देखते हैं, जैसे कि दिल्ली भारत देश में है, लेकिन दिल्ली भारत देश नहीं है। यदि आप मेरी बातों से असहमत हैं, तो आप मुंबई के लोगों से पूछ सकते हैं कि मुंबई भारत देश नहीं है, परंतु यह भारत देश में है। हो सकता है कि व्यापार मंडल सोचे कि यह भारत देश है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। ठीक उसी प्रकार कलीसिया भी राज्य में है, परंतु स्वर्ग का राज्य ऐसे ही कहा गया है, और स्वर्ग का शासन पूरी पृथ्वी पर है और कलीसिया इसी राज्य में है। अब मैं जानता हूं कि धर्म विज्ञानियों ने वास्तव में वातावरण को धुंधला कर दिया है और उन्होंने इस कथन को अत्यंत जटिल बना दिया है, और मुझ जैसे कमजोर वक्ताओं को एक साधारण वर्णन के साथ आना चाहिए, और वह यह है कि स्वर्ग का राज्य सारी पृथ्वी पर स्वर्ग का शासन चलाता है। यह सुसमाचार जो यहूदियों को लिखा गया, इस रीति से समझा गया कि पुराने नियम की भविष्यवाणी, जिसमें स्वर्ग से राजा के आने के बारे में थी, जो इस पृथ्वी पर वह अपना राज्य स्थापित करेगा और वह भी स्वर्गीय स्तर पर, और यह उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। आप देख सकते हैं दानियल की पुस्तक 2:44, 7:14 और 27 में। मित्रों, इस सुसमाचार का मुख्य विषय स्वर्ग का राज्य है, वह जो इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने जा रहा है, वह प्रभु यीशु मसीह है। राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। मत्ती रचित सुसमाचार में राज्य से संबंधित 3 बड़े विवरण हैं। पहला है पहाड़ी उपदेश। मैं समझता हूं कि यह राज्य का कानून है, जो कानून या व्यवस्था उस दिन लागू की जाएगी। मुझे लगता है कि यह उसकी अधूरी सूची है। दूसरा है रहस्यमय दृष्टांत। ये दृष्टांत जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 में है, जो राज्य के बारे में है। हमारे प्रभु हमसे कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य बीज बोने वाले के जैसा है, अर्थात राई के दाने के जैसा है, और भी बहुत कुछ है जो हमें आगे इसमें बताते हैं। तीसरा है जैतून पर्वत से उपदेश, या पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने की आशा में आगे देखता है। आगे हम देखेंगे कि शब्द स्वर्ग का राज्य मत्ती रचित सुसमाचार में एक ऐसी बात है जो आगे बढ़ती ही जाती है। इसे देखना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। मत्ती रचित सुसमाचार में एक गति दिखती है, एक आंदोलन या क्रिया दिखती है, और यदि हम इसे नहीं समझ पाएंगे तो उसे समझने में चूक जाएंगे, तो समझे कि हमने सुसमाचार को खो दिया है। मानो खुले रास्ते पर बंद करना या रोकना हम भूल गए हैं। और मेरे भाई, यदि आप चूक जाते हैं तो आप मुसीबत में हैं। इसलिए यदि हम इस अद्भुत सुसमाचार की गति को या इसमें जो आंदोलन है उसे अनदेखा करते हैं या उसको चूक जाते हैं, तो हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों से वंचित हो जाते हैं। यह सुसमाचार उत्पत्ति की पुस्तक से बहुत अधिक मिलता जुलता है। ये बाबेल की 2 प्रमुख पुस्तकें हैं, और आप वास्तव में इन दोनों पुस्तकों के साथ अच्छी तरह से परिचित हो जाइए, ताकि आप अपने तरीके से उनके बारे में सोच सकते हैं। मैं आपको अध्याय के शीर्षक दूंगा, ताकि आप स्वयं से इस पुस्तक में से सोचना सीख सकें। पिछले दिनों में मैं अपने विद्यार्थियों से कहता था, जब तुम रात में नहीं सो सकते हो तो तुम भेड़ों को मत गिनो, इसके बदले में तुम अपने से उत्पत्ति की पुस्तक की बातों को सोचो, तब तुम मत्ती रचित सुसमाचार की बातों के विषय में सोचकर उसे समझ सकते हो। अध्याय के बाद अध्याय लो कि पहला अध्याय किसके विषय में है, दूसरा अध्याय किसके विषय में है। यदि आप मुझसे कहते हैं कि आप भेड़ गिनना या अध्याय गिनना पसंद नहीं करते हैं, तब तो आप चरवाहे से बातचीत कीजिए, परंतु सबसे अच्छा तरीका चरवाहे से बात करने का यह है कि आप इन दोनों पुस्तकों में से होकर जाइए। यह आपकी सहायता करेगी कि आप उसे अच्छी तरह जानेंगे और संपर्क में आएंगे। जो भी हो, हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह हमसे बातें करे, इससे बढ़कर कि हम उससे बातें करें। मैं नहीं जानता कि मेरे पास उससे कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु उसे मुझे बहुत कुछ कहना है। मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप मत्ती रचित सुसमाचार के अध्यायों को पढ़ें ताकि आप उसकी गति को समझें। मित्रों, अब मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार को विभाजित करने का एक तरीका या मार्ग बताता हूं। मैं थोड़ा भिन्न विभाजन का अनुसरण करूंगा, परंतु यह आपको पूर्ण रीति से सोचने में सहायक सिद्ध होगा। बाइबल को समझने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इसको 6 भागों में बांटना चाहते हैं। पहला है अपने राजा को देखो, दूसरा राजा की तैयारी अध्याय 2:4-16 पद तक, तीसरा राजा का प्रचार अध्याय 4:17 पद से 9 अध्याय के 35 पद तक, चौथा है राजा का कार्यक्रम अध्याय 9:36 पद से 16 अध्याय के 20 पद तक, पांचवा राजा का दुखभोग अध्याय 16:21 से 27 अध्याय के 66 पद तक, और छठवां और आखिरी राजा का सामर्थ अध्याय 28। मित्रों, यहां पर हमारा समय समाप्त होता है, इसलिए अब हम इसे यहीं पर रोक देते हैं। हम अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे। तब तक आप प्रभु की संगति में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
तू ही दाता विश्व
श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा हिंदी कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से आपको जरूर लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को और अधिकाई से पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि हमारे पास पवित्र शास्त्र बाइबल एवं नया नियम उपलब्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। अब आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414, 9958820414। आप हमें ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।